अब जब अल्लाह से ताल्लुक सीधा होता है ना, तो फिर उसके असरात कहाँ दिखते हैं? सबसे पहले माँ बाप के साथ ताल्लुक में। आइए इसको देखते हैं। दूसरा हुक्म, वबिल वालिदैनि एहसाना, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। याद रखिए और नोट कीजिए, कुरान पाक में चार मुकाम ऐसे हैं जहां अल्लाह के हक के फौरन बाद वालदैन के हक का तज़किरा है। ये उन्हीं में से एक मुकाम है, क्योंकि हमारे खानदानी निज़ाम के लिए बहुत अहम बुनियाद है कि वालदैन के साथ हुस्ने सलूक हो, इनका अदब और एहतराम हो, इनकी खिदमत की जाए, इनके सामने आवाज़ पस्त रखी जाए। ये मौजू इंशाल्लाह हमने पढ़ना है सूरत बनी इसराइल में बड़ी तफसील के साथ। बनी इसराइल में पढ़ेंगे कि हमारे माशरे में इसकी क्या अहमियत है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि इस्लाम का मिजाज क्या है। देखिए, नेकी के कामों का, यानी मैं नेक हूँ तो मेरी नेकी कहाँ से पता चलेगी कि मैं अपने वालदैन के साथ कैसी हूँ? आज जिस माशरे में हमने आंखें खोली, वहाँ बाप माँ बच्चों के लिए तो क्या कुछ हैं, बच्चों के स्कूल्स हैं तो बरने हागे हैं तो डे केयर्स हैं, तो बूढ़ों के लिए क्या, ओल्ड होम्स और सिकेएम और पता नहीं क्या कुछ नाम आप सब जानते हैं। इंसान को अल्लाह ताला इसी तरह से चाहता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे जैसे बचपन में वो रखते थे, और साथ ही फिर आप देखिए आम रिश्तेदार, फिर मुख्ताज है, वाबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और कराबतदारों यतीमों और मुख्ताजों के साथ, यानी ये वो लोग हैं जो खुद अपना हक मांग नहीं सकते। अमूमन देखिए माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो फिर वो हमारे मोहताज हो जाते हैं, जब वो हमारे मोहताज हो जाएंगे तो फिर वो हम पे नजरें लगाएंगे कि हम उनका ख्याल रखें। ऐसे वक्त में वही खैर वाला होगा, वही माँ बाप का हक दे सकेगा जिसका वाबुदुल्लाह पे यकीन होगा। देखिए, जवान औलाद माँ बाप के आगे सर उठा ले, माँ बाप को घर से निकाल दे, वो क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपना हक नहीं ले सकते। जैसे बच्चे को माँ बाप छोड़ दें तो बच्चा कुछ कर सकता है? या मर जाएगा, लुढ़क भुड़क जाएगा, या कोई उसके साथ होगा। तो ये हक सिर्फ वो देगा जिसको अल्लाह से हक मिलने की उम्मीद है। एक जुमला लिखिए, जम है इस सबक का, बूढ़े माँ बाप को हक वही दे सकता है जिसको अल्लाह से हक मिलने की उम्मीद होती है। क्योंकि अमूमन बुढ़ापे में माँ बाप अपनी सारी तवानाइयाँ ताकतें, बल्कि बाज़ तो माल दौलत तक दे चुके होते हैं। पहले हम छोटे थे, वो खाना पकाते थे, वो पैसे देते थे, पॉकेट मनी के लिए उनकी तरफ रजू करना पड़ता था, सिक्योरिटी चाहिए थी, रात को डर लगता था, भारी काम खुद नहीं कर सकते थे। अब तो माशाल्लाह हम सारे खुद करने लगे, अब उनसे क्या मिलना है? फिर एक जुमला लिखिए, जब माँ बाप और कुछ नहीं दे सकते तो वो हमें सबसे कीमती चीज देते हैं, और वो दुआएं। सारी जिंदगी माँ बाप जो कुछ देते हैं आपको, मुझे, हमें दिया है, उसको एक पलड़े में डाल दें, उसी के नतीजे में हम कुछ बने ना। आज डॉक्टर को बना है तो क्यों बना है? आज पायलट है तो कैसे बना? कोई अगर हाफिज़े कुरान बन गया तो माँ बाप से मिला ना। ये सब कुछ उसकी करेक्टर बिल्डिंग के लिए था। बात समझ गए? माँ बाप की कोशिशों और मेहनतों के नतीजे में हमारा किरदार बन गया, हमें अल्लाह ने एक ऑनर दे दी, हम सोसाइटी में बाइज्जत हो गए। बट अब इस ऑनर और इस चीज को बरकरार रखने के लिए माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। और किसी की बड़ी खूबसूरत बात है कि माँ बाप को ये ना कहो कि मेरे लिए दुआ करें, वो काम करो कि उनके दिल से दुआएं निकले। क्योंकि ये जुमला तो मैंने भी बीसियों बार बोला है ना, कि दुआएं मांग के नहीं ली जाती, ऐसे काम किए जाएं कि खुद ही दिलों से दुआएं निकलें। और कभी रात में किसी का ख्याल आ जाए, किसी का करवट पलटने में ख्याल आ जाए, किसी का सहरियों में ख्याल आ जाए, किसी का तहज्जुदों में ख्याल आ जाए, ऐसा किरदार बने कि लोग आपके लिए दुआएं खुद करें। हम दिल दुखा के कहते हैं, वैसे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यही दुआ हो सकती है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, और तो कुछ नहीं हो सकती फिलहाल। तो याद रखिए, ये माँ बाप के साथ ताल्लुक की बात है। जितना ज्यादा इंसान अपने घर के अंदर नेकी, रहम और मोहब्बत की फिजा रखता है, बाहर जाके भी अच्छा होगा। और याद रखिए कि माँ बाप से मोहब्बत करना बंदे की फितरत में रखा हुआ है। साथ ही साथ जो रिश्तेदार हैं और मोहताज हैं, ये हमारे साथ रहने वाले इंसान हैं। इनके साथ अच्छा मामला करना हमारे इंसान होने का सबूत है। रिश्तों में कशिश होती है फितरी तौर पे, और ख़ास तौर पे माँ बाप पे यहाँ एहसान की बात है। एक लेक्चर है इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं, इसी नाम से शायद, माँ बाप मेरी जन्नत मेरी जहन्नम, मेरे ख्याल 20 से 22 एहसान के तरीके लिखाए थे, जिसमें सबसे पहला अभी बता देती हूँ कि आप उनके लिए शुक्रगुजार हो, बी थैंकफुल टू देम। वरना मैंने तो आज वो भी जुमले माँ बाप के मुंह से सुने, कहते हमारे बच्चे कहते हैं आपने क्यों पैदा किए, ना करते, इट वॉज योर प्लेयर, ये आपकी मर्जी थी, अब हम पैदा हो गए हैं तो हम क्या करें। यहाँ तक जुबानें खुल गई हैं आज, इतना बोल्ड कर दिया है वक्त ने और तालीम ने बच्चों को कि ना करते पैदा, हमने कब कहा था करो। लेकिन इस्लाम तो कहते हैं रब इरहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। इंशाल्लाह इस मजमून को हम आगे पढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ये बात है। आप चंद आयतों के नंबर नोट कर लें ताकि अगर कभी आप इस मौजू को मजीद समझना चाहें तो वहां से देखें। सबसे सूरत बनी इसराइल है, आयत मेरा हल 29 है कि वक़ा रब्बु कल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना। फिर इसी तरह सूरत लुकमान में यह आयत आएगी अनिश्कुर ली वली वालिदई का, दूसरा रुकू जहां से शुरू होता है। फिर वबसैन अल इंसान अभी वालिदई ही, कि हमने इंसान को वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इब्ने अरबी हैं एक मुफसर, कहते हैं वालदैन के साथ हुस्न सलूक फराइज में से, दीन के अरकान में से एक रुकन है। रुकन को बिल्कुल ऐसे समझे जैसे टेबल की टांग, टांग निकल गई तो टेबल टूट जाएगा। और इनके साथ हुस्न सलूक और अकवाल में भी और अफाल में भी। और सूरत बनी इसराइल में तो हम बैठने का तरीका भी सीखेंगे, इनके सामने चलने का, खड़े होने का, बोलने का तरीका भी सीखेंगे कि व कज़ा रब्बुकल्ला ताबुदुल्ला याह वबिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा वकिलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। और आपके रब ने फैसला कर दिया कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आपके पास इन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, दोनों को उफ ना को, आप देखिए उफ, अगर आप मेरे एक्शन की तरफ देखिए उफ उफ, किसी ने कहा कि उफ एक फूक होती है ना, इससे माँ बाप के दिल का चिराग बुझ जाएगा। और मुफसरीन कहते हैं अगर उफ अलिफ और फा दो लफ्ज हैं सिर्फ, उफ से भी कोई छोटा लफ्ज होता ना तो अल्लाह वो लिखते, वो कहते कि माँ बाप क्या उफ ना बोलो। तो आज के बच्चे यू आर वेरी मीन, यू आर फुला फुला फुला, आज तो माँ बाप को वो खरी खरी सुना के चले जाते, आपको तो है ही स्टूपिड, यू आर सो इस पतन, समझ नहीं आता। और साथ ही करना इनको झिड़को, इनसे इज्जत वाली बात करो। किसी सिस्टर से बात हुई, ऐसी कोई मीटिंग थी तो बता रही थी कि पहले तो बारने आगे सुबह में खुलते थे ना, हमेशा से शुरू से सुना हुआ हमने, तो अब शाम के बारने आगे खुलने लगे हैं। हर बारने आगे में ये मैसेज आ रहे हैं कि आप शाम की शिफ्टें शुरू करें। तो क्यों, कहने लगे कि वो औरतें जो शाम को काम करती हैं इवन ओवरनाइट, उनके बच्चों को संभालने के लिए। मैंने कहा ये इंसान के बच्चों को जानवर बना रहे हैं। औरत घर में रात को ना आएगी तो वो बीवी बनेगी और वो माँ बनेगी। तो फिर कल अगर वो आपको बुढ़ाए घरों में डाल आते हैं, ओल्ड होम्स में, तो क्या बड़ी बात है। याद रखिए हमारे बच्चे इस माहौल में नहीं जाते रोज, ये कुरान से जोड़ने से बात बनती है। आज क्यों इतने डिफरेंसेस हैं, रिश्तों में कठोरपन, आंखों में सर्द मेहरी, और अभी तो हम खिला पिला रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ दीन को निकाल दें तो आज गोरों को देखें। मैंने एक नॉन मुस्लिम बच्ची के साथ बातें की, ऐसे रस्ते में जंग थी, तो मैं, वो कहने लगी उसके पेरेंट्स भी वो चर्च में प्रीस्ट थे ये वो, तो कोई बात हुई तो मैंने कहा कि, बल्कि एक अमेरिका में हमारी क्लास में रिवर्ट आती थी तो उनसे भी ये बात हुई, तो मैंने कहा कि व्हाट बाइबल सेज अबाउट द पेरेंट्स, कहती नथिंग, ये आयतें अब आप यहां पढ़ें, ये तौरात में थी, आज की बाइबल में नहीं है, कहती नथिंग, जस्ट लाइक अदर ह्यूमंस, जो दूसरों के साथ अच्छा करना है वो उनसे करो। तो याद रखिएगा अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ेंगे ना तो वो हमसे जुड़ेंगे। ये जुमला लिख ले, आज हमने अपनी औलादों को कटी पतंग की तरह छोड़ दिया, वो हमसे भी कट गए। हमने उनको अल्लाह से कम जोड़ा, दुनिया से जोड़ा। हमारा बच्चा नमाज ना पढ़े हम कहते हैं इट्स ओके, पढ़ लेगा बड़ा होके, लेकिन जब वो हमारे आगे बोलता है तो उस दिन हम उठा के उसको ले आते हैं मदरसे में कि इसको नेक बना दो, ये नहीं होगा। लिखिए जरा चंद बातें। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक ना करने वाला दुनिया में क्या देखता है, उसकी दुनिया कैसी होती है? तो जवाब, वालदैन को सताने की सजा आखरत से पहले दुनिया में मिलती है। ये सही रिवायत है। अकूकुल वालदैन कहते हैं, जैसे हकूक है ना हा से, इस तरह आईन है। अकूकुल वालदैन, माँ बाप की नाफरमानी। तो हदीस में आता है, सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन अबी औफा की रिवायत है, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर थे। एक आदमी आकर अर्ज करने लगा, एक नौजवान आलम नज़ा में है, इसको कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मगर नहीं पढ़ सकता। रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या वो नमाज पढ़ता था? तो आने वाले ने कहा, जी हाँ। आप उठकर चल दिए, हम भी आपके साथ चल दिए। यानी आपने पहले वेरीफाई किया कि ये नमाजी शख्स है, फिर गए उसके पास। फिर आप इस नौजवान के पास तशरीफ लाए और कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगा, मैं नहीं कह सकता। फरमाया, क्या वजह है? किसी ने अर्ज किया, ये अपनी वालदा की नाफरमानी करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी वालदा जिंदा है? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया, उसे बुला लाओ। वालदा को बुलाया गया, वो हाजिर हुई। आपने फरमाया, ये तुम्हारा बेटा है? कहने लगी, जी हाँ। कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर बहुत बड़ी आग भड़काई जाए और तुम्हें कहा जाए कि तुम इसकी सिफारिश करोगी तो हम इसको छोड़ देते हैं, वरना इसको आग में जला डालेंगे, क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी या जल जाने दोगी? इसने अर्ज किया, तब तो रसूलुल्लाह, मैं सिफारिश करूंगी। आपने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह को और मुझे गवाह बनाकर कहो कि तुम इससे राजी हो। अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैं तुझे और तेरे रसूल को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ। रसूलुल्लाह ने इस लड़के से कहा, है लड़के, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। नौजवान ने ये अल्फाज कह दिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरे जरिए से इस नौजवान को दोजख से बचा लिया। ये तबरानी की और मुस्नद अहमद की रिवायत है। यानी कलमा जारी नहीं हो रहा माँ बाप की नाफरमानी की वजह से। और वह भी ज़िल कुरबा, रिश्तेदार। कुरान पाक में 11 11 टाइम्स रिश्तेदारों के हकूक का तذکرہ है। आज कैसे लोग आपको दीन के नाम पे हकूक से छोड़ पीछे कर सकते हैं? कोई आपको लोगों के, रिश्तेदारों के हकूक से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसका तذکرہ किया है। और रिश्तेदार भी दूर के हैं, करीब के, आगे हम पढ़ेंगे इसी में इंशाल्लाह। तो हर तरीके से, अच्छे तरीके से उनसे बात करना। सूरह बनी इसराइल में आएगा, वातिज़िल कुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वबनस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, के रिश्तेदारों को उनका हक दो, मस्कीनों और मुसाफिरों को भी। बनी इसराइल 26 है, और मेरे हाल जो आयत में 29 बोला था, 23 होगी सूरह बनी इसराइल की, डबल चेक कर लीजिएगा। सलमान बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देना सदका है, और रिश्तेदार को सदका देना दो नेकियां हैं, एक सदके की और एक सिला रहमी की। इब्ने माजा की रिवायत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि मिस्कीन को देने पे एक है, तो रिश्तेदार को देने का दोहरा अजर है। तो ये क्यों है? इसलिए कि ये किसी भी इंसान के आला अखलाक का होने वाली बात है। और दूसरी बात आगे यतीम की आ रही है, यतीम को देने का अजर क्यों है? क्योंकि जवाब में उसके अब्बा से आपको कुछ नहीं मिलना। देखिए, हम देते भी हैं तो लेते भी हैं। आप किसी के बच्चे को देंगे, कल कोई आपके बच्चे को देगा। यतीम को तो वही देगा कि जिसको कोई फिर जवाब में लेने की उम्मीद नहीं। और यतीम किसको कहते हैं? छोटे बच्चे, प्यूबर्टी से पहले, बलूगत से पहले, जो बाप से महरूम हो जाए। लड़की की यतीमी शादी पे ख़त्म हो जाती है, और लड़के की यतीमी बलूगत पे ख़त्म हो जाती है। बूढ़े लोग यतीम नहीं होते। बाद लोग सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहते हैं, हम यतीम हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा मामला करना चाहिए, किफालत करें। कैसे करें यतीम का हक अदा? उनकी किफालत करें, नेक सलूक करें, उनकी दिलजोई करें, उनको अदब सिखाएं, उनके दीनी दुनियावी मामलात में उनकी बेहतरीन तरबियत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों की खबर लेने वाला और खर्च करने वाला क्यामत के दिन मेरे साथ होगा जन्नत में। और आपने यूं दिखाया, यानी ये शहादत की उंगली है ना, और इसके बाद ये दरमियानी यूं। बाद सहाबा कहते हैं कि इस तरह, ये देखिए, ये दोनों मिली हुई है ना, कि जन्नत में मैं और यतीम की किफालत करने वाले यूं होंगे। और बास कहते हैं कि ये लंबी उंगली में थोड़ी सी लंबाई है ना, और दूसरी उंगली छोटी है। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ये है, तो यतीम की किफालत करने वाले का बस थोड़ा सा कम होगा। वल्लो आलम, दोनों बातें ठीक है, लेकिन हक बहुत है। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है, और ये सारी बातें हमें इस चीज़ का यकीन दिलाती हैं कि हमें माशरे के गिरे पड़े लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। अब एक सवाल पैदा होता है, मिस्कीन कौन है? हालांकि हम पीछे बात कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ दोहराई के तौर पर, मिस्कीन कौन होता है? सकना से, रुक जाए, जिसको मुश्किल ने रोक दिया। देखिए, घर में पैसे ना हो तो बंदा मेहमान के आने से भी जान छुड़ाता है, खुद कहीं नहीं जाता, किराया लगाना पड़ेगा, कोई आ गया तो चाय पिलानी पड़ेगी, तो एक किस्म का उसकी जिंदगी में सुकून जमूद आ जाता है। ठहराओ, हर दावत में नहीं जाता देना पड़ेगा, हर शादी में नहीं जाता कि कपड़े चाहिए होंगे अच्छे, तो वो एक किस्म का ठहराव वाली जिंदगी होती है। ये वो लोग होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, दूसरों से मांगते नहीं वरना वो फकीर हो जाएंगे। वो है जो छुपाते हैं अपनी गुर्बत को, अबू हुरैरा कहते हैं। मिस्कीन वो नहीं जो लोगों के यहाँ चक्कर लगाता रहे एक या दो लुक में या एक दो खजूरें लेकर वापस आ जाए। मिस्कीन तो वो है जो इतना माल नहीं पाता जो उसे गनी कर दे, ना किसी को इसका हाल मालूम होता है कि कोई इसको सदका दे, और ना खड़े होकर लोगों से सवाल करता है। उर्दू में कहते हैं ना सफेद पोश लोग, तो ये वही लोग हैं। बुखारी और मुस्लिम और ऐसों को ढूंढ ढूंढ के देने की जरूरत है। अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ये माल बड़ा सरसब्जो शादाब है, यानी ये माल देखने में बड़ा मीठा लगता है। सलमान का माल कितना अच्छा है जिससे वो मिस्कीन यतीम और मुसाफिर को अता करे, बुखारी की रिवायत है। फिर इसके बाद अब एक अगली कैटेगरी, जरा सी आयत के ऊपर दोबारा नजर डालिएगा। वल जारी जिल कुर्बा वल जारिल जुनूब, और कराबत और हमसाए और अजनबी हमसाए के साथ। यानी पहले आम तौर पर देखिए मोहल्ले ऐसे होते थे कि एक कबीले के लोग एक ही जगह रहते थे, वहां रिश्तेदार भी होते थे। हमारे अपने घरों में ऐसे ही है ना, ये मामू का घर, ये नानी का, ये उसके साथ मम्मी के मामू का, ये चचा का, इस तरह घर होते थे। तो उसमें ये हमसायगी रिश्तेदारी दोनों साथ मिल जाती थी, और कभी कभी कोई अजनबी भी होता था, जैसे आजकल हमसाए अजनबी हैं। तो हमसायों के बारे में इस्लाम क्या कहता है? बहुत कुछ कहता है। आप देखिए कि आपका रिश्तेदार अगर आपके करीब रहता है फिर तो और ही बात है। वो मारूफ रिवायत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे पड़ोसियों के बारे में यहाँ तक वसीयत की कि मुझे गुमान हुआ कि आप पड़ोसियों को वारिस भी बना देंगे। ये बुखारी की रिवायत है 6687, पढ़ सकते हैं जाके। आपने फरमाया पड़ोसी तीन किस्म के हैं, एक हक वाला यानी अदना, दूसरा दो हक वाला, और तीसरा तीन हक वाला। आला एक हक वाला वो है जो मुशरिक हो, यानी जैसे हमारे नॉन मुस्लिम नेबर्स हैं, उनका भी एक हक मौजूद है हम पे। दो हक वाला वो है जो मुसलमान तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई अपना फैमिली मेंबर। मगर तीन हक वाला वो है जो मुसलमान भी हो और रिश्तेदार भी हो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। बुखारी की रिवायत है अबू हुरैरा से कि जो शख्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। फिर बुखारी की एक रिवायत में आते हैं आपने तीन बार ये बात की, वो ईमान वाला नहीं, वो ईमान वाला नहीं। ये दो बार कहा या तीन बार, और वल्लाह ही भी साथ कहा। साहबा ने पूछा कौन? फरमाया जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना रहे। फिर एक और रिवायत है मुसद अहमद की इब्न अब्दुल्ला बिन उमर से, आपने फरमाया अल्लाह की निगाहों में बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के हक में बेहतर हो, और बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक में अच्छा हो। तो याद रखिए कि हमें अच्छा होना चाहिए, तोहफे दें, हदिया दें, सदका दें, दावत पे बुलाएं, बात में अच्छे हों, आवाज़ें ऊंची ना हों। अगर आप ऊपर रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में कोई और है तो अपने कदमों की आवाज़ों से उनको रोकें, म्यूज़िक को चलता है घरों में उसको आहिस्ता रखें। कोई भी इवन दर्स सुनते हैं आप तो इतनी आवाज़ में सुने, कुरान सुने तो ऐसी आवाज़ में सुने कि दूसरे को तकलीफ ना हो, कोई बीमार हो सकता है, परेशान है, उसकी गाड़ी की जगह ना रोकें, बर्फ़ उनकी उठा दें, आप अपने कचरे के से उनका फेंकें। अब इन मुल्कों में तो हम टेढ़े होते नहीं हैं क्योंकि मेरे को टेढ़े होने नहीं देता, फ़ौरन पुलिस आ जाएगी जी आपके नेबर आप तंग करें। अब तो अमेरिका में ये हक है आपको, आपको किसी नेबर रात 7 बजे के बाद या कितने बजे या कोई खास वक्तों में कोई भी आपको आवाज़ नेबर से आए ना फ़ोन कर सकते हैं पुलिस को कि भाई ये हमें सोने नहीं दे रहे या वट एवर, तो वो केस बन जाएगा उनके ऊपर। तो यहाँ तो हम सारे सीधे रहते हैं, मसला होता है अपने मुल्कों में, अपना कचरा इकट्ठा करके हम सारे के आगे डाल दिया। हम लोग मुझे लगता है इंसानियत के दर्जे से गिरते जा रहे हैं, इस्लाम का दर्जा तो दूर की बात है। और आप याद रखिए कि जो ये दूर और करीब के रिश्तेदारियों की बात है, तो अब हम लोग तो दूर रहते हैं, हमारे रिश्तेदार अपने मुल्कों में अगर यहाँ साथ भी नहीं है तो बेहतरीन सिला रहमी क्या है? उनको दीन की बात बताना। बाज़ लोग रिश्तेदारियों का नाम लेकर दीन की बात नहीं बताते। लोग कहते हैं नहीं जी रिश्तेदारी अब शादियों में तो जाना ही है, उनकी रस्मों में तो जाना है जी रिश्तेदारी, और सबको उस वक्त कतः रहमी की हदीसें याद आती हैं। देखना अल्लाह इनको पूछेगा ये मेहंदी की रस्म में नहीं आए हालांकि रिश्तेदार थे, क्या हुआ गा नहीं थे लेकिन इनको तो आना चाहिए था क्योंकि ये लड़के के मामू हैं, नहीं आ सकते। सबसे बेहतरीन रिश्तेदारी का हक है कि जो अपने लिए पसंद है वो दूसरे को दे। हजरत आयशा से मतलब रिवायत है कि अल्लाह के नबी से कहा मेरे दो पड़ोसी हैं मैं किसको हदिया दूं? तो تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے اس کو دے دو. بخاری کی روایت ہے. پھر ایک وقتی پڑوسی کی بات اگلے حصے میں دیکھے گا. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ. یعنی جو پڑوسی یا نیبرز ہیں وہ تو ایک قسم کے پرماننٹ ہوتے ہیں نا, چلے سال آپ رہے سال سے وہ بھی ادھر ہی ہیں, لیکن ایک عارضی نوعیت کی ہمسائیگی ہے. مثلا آپ بس میں بیٹھے تو آپ کے برابر والے, آپ جہاز میں گئے 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آپ کے ساتھ والا. اس کو کہتے ہیں صاحب بالجنبی, جنب کہتے ہیں کروٹ کو, ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا. اسی میں وابن السبیل کا اگر لفظی معنی دیکھیں نا تو راستوں کا بیٹا, مسافر, یعنی جو بہت لانگ روٹ پہ ساتھ ہوا. اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے کہ جو ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے کیسے حقوق ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تو جیسے اب اس وقت بھی آپ صاحب بالجنب ہیں, ہم دوست ہیں, ہم نشین ہیں, ایسا شخص جس سے کہیں کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے آمنا سامنے. آپ ہر روز ادھر آ کے اگر بیٹھتے ہیں یا ہر کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ایک دوسرے کے صاحب ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس سے سفر پہ بھی ہے, اس سے کام کے ساتھی بھی ہیں, کولیگس بھی اس سے مراد ہے, اور بیوی, کیونکہ بیوی کے بھی تو ساتھ شوہر کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اسی طرح بیوی ہے تو شوہر سے بھی ہوتا ہے, دونوں کے لیے. اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جو بیٹھتے ہیں, کوئی کام سیکھنے کے لیے, کاروباری سلسلے میں میٹنگ ہو رہی ہے, یہ سب لوگ اسی کے اندر آئیں گے. پھر اسی طرح دیکھیں جو وابن السبیل خاص طور پہ کھول دیا نا, اس کے 3 ڈفرینٹ اینگل ہے. اس کو تھوڑا سا حدیثوں سے سمجھیں گے, کیونکہ یہ ٹاپک ہمارے دین کا حسن دکھا رہا ہے کہ مسافروں کے بھی کیا حقوق ہیں. وابن السبیل سے مراد غریب الوطن, دوسرے ملک میں آیا ہوا اجنبی, دوسرے شہر سے آیا, محتاج ہے کہ نہیں. پہلے دور میں آپ دیکھیے ہوٹل موٹلس نہیں ہوتے تھے, تو لوگوں کو خود ارینج کرنا ہوتا تھا, مسجدوں میں آتے تھے, تو بعد وہ مہمان آ گیا اب اس کو کھانا چاہیے, تو اس کے لیے ضرورت ہوتی تھی. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس فالتو سواری ہے تو اس کو دے دو جس کے پاس سواری نہیں ہے, زائد کھانا ہے تو اس کو دے دو جس کے پاس کھانا نہیں ہے. غرض کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا, حتیٰ کہ ہم سمجھنے لگے کہ اب جو باقی بچا ہوا مال ہے اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں رہ گیا. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر 3 لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں, نہ ان کو پاک کرے گا, اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. اور وہ کون ہے ان میں سے ایک؟ کہ جس کے پاس راستے میں فالتو پانی ہو لیکن پھر بھی مسافر کو نہ دے. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ ایک صورت کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں تو ان کی سیٹ زیادہ نہ لیں, آپ بار بار تنگ نہ کریں, آپ کو یہ سن رہے ہیں چیز تو آہستہ آواز سے سنیں, آپ کے کپڑوں سے بو نہیں آنی چاہیے, پسینے کی سمیل سے اپنے ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو نہ تنگ کریں. اس لیے ہمیشہ جب بھی کہیں بھی جائیں صاف ستھرے ہو کے جائیں, چیک کریں آپ کے بائیں میں سے سمیل تو نہیں آ رہی, آپ کے سکارف میں سے گھی کی سمیل تو نہیں آ رہی, کھانا کھاتے پکاتے ہوئے کپڑوں پہ کوئی نشان دھبے پڑ گئے ہیں, یہ ساری چیزیں دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں. دیکھیں ہم جب اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ اصل میں ہم اپنے اوپر نہیں دوسروں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں, اگلوں کی نظروں کو ہم تسکین دے رہے ہوتے ہیں, ایک مہذب شہری ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ آپ خود ساتھ سفر تو نہیں کر رہے لیکن آپ کے شہر میں کوئی مسافر آ گئے, تو ڈفرینٹ اینگل سے بہرحال ان کی مدد کرنی ہے. اور سب سے پسا ہوا طبقہ جو آج ہمارے کم از کم اپنے ملکوں میں تو بہت ہی بیچارہ ذلیل اور حقیر ہو گیا, وہ کون ہے؟ اس دور کے تو وہ تھے وما ملکت ایمانکم, وہ لونڈی اور غلام جو تمہارے مل کے زمین میں ہو. میں اس کو آج کے دور میں کہتی ہوں ماسیاں. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ اپنے کلچر کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں تو جو ہمارے ملک میں ماسیوں, ڈرائیوروں, چوکی دار باباؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کسی دشمن کے ساتھ نہ کرائے. ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. میرا خیال ہے واحد ملک ہے پاکستان جو ہم نے دیکھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, چلے یہ کہہ لے, کہ جہاں ایک صوفے پہ 2 خواتین برابر نہیں بیٹھ سکتی, ایک ہے مالکن اور ایک ہے ماسی, اور آپ کہہ دیں ان کو تو وہ کونے میں ایسے بیٹھیں گی کہ سمٹی پڑی ہیں کہ بھی گر جائیں, ضرورت ہی نہیں کہیں کہ صوفے پہ بیٹھی بھی ہے. ایک جیسے برتن, یعنی جن برتنوں میں آپ کھاتے ہیں ان میں وہ نہیں کھاتے, ان کے سٹیل کے برتن ٹوٹے ہوئے, کپ ہینڈل ٹوٹے ہوئے, اندر پتہ نہیں گند پھنسا ہوا ہے, نہیں بکیا نہیں, ان کے دانتوں میں کیویٹی ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ میں, آپ یہاں تو ناروے میں نے اتنا رواج نہیں دیکھا الحمدللہ میڈس کا, لیکن باقی جگہ میں یو ایس اے کینیڈا میں تو بالکل ہی کامن ہے. جیسے پاکستان میں آتی ہیں میڈس, ہیلپ یور سیلف, ٹیک یور ڈرنک پلیز, وٹ ایور یو لائک, فریج میں سے جو کھانا کھا لو, کیونکہ وہ گوری ہے, وہ انگلش بولتی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ماسی کے ساتھ ہم کوئی ڈسکریمنیشن کریں. اپنے ملکوں میں کیا کرتے ہیں, اور پھر جو تانے دیتے ہیں اللہ معاف کرے, اور جو چوکی داروں کے ساتھ ہمارے چھوٹے 4-4 سال کے صاحب جی جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں, صاحب جی کا بیگ بھی چوکی دار نے اٹھانے اور گاڑی کا دروازہ بھی کھولنے اور ٹھڈے بھی مارنے, اور بڈھا بابا جی پیچھے اور وہ 4 سال کے صاحب جی وہ آگے پھدکتے ہوئے آ رہے ہیں. हम अपने बच्चों को बदतमीज बना रहे हैं। आप देखिए, इससे खूबसूरत तरीके से कोई इंसानी हकूक देगा? तो हमेशा इन सारी चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि इससे अंदर की आजजी होती है। इंसान तो बराबर है, दिल तो सबका एक जैसा है। आज मेरे पास नहीं है तो क्या कल मेरे पास हो नहीं सकता? और आज मेरे पास है तो क्या कल छीन नहीं सकता? हर बंदा अगर अपने ऊपर देखे तो इस चीज़ को देख सकता है। नबी सल्लम ने मरज़ुल मौत में क्या कहा था? अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज और अपने लौंडी गुलामों का ख्याल रखो। ये अबू दाऊद की रिवायत है। अबू ज़र से रिवायत है कि आपने फरमाया, बिला शुबा ये गुलाम, ये लौंडियाँ, ये तुम्हारे भाई बंद हैं, तुम्हारे खादिम हैं। अल्लाह ने इनको तुम्हारे तसरुफ़ में दे दिया, इनसे इतना काम ना लो जो वो कर नहीं सकते। इनको वो खिलाओ जो खुद खाते हो, जो पहनाओ जो खुद पहनते हो, जिसकी ताकत ना हो उसका काम ना लो इनसे। बुखारी की रिवायत है। आज हम देंगे भी ना तो सेब है ना, तो वो जो काना सेब है ना जिसपे दाग लगा है, ये मासी को दे दो। देना भी एक है, आपके घर सेबों की पेटी आई है, आप एक अच्छा सा सेब, दूसरा दो तीन लेकर उसको भी दे दें, कोई मना नहीं है। वो गला हुआ देना भी एक है और छोटे साइज का देना है। हांडी में से ढूंढ के हड्डी वाली जो बोटी अगर है भी, उसमें कुछ लगी तो हड्डी शोरबा डाल दिए, लो खा लो। ये जुल्म है, ये मना है। देखिए, इस्लाम खाने पीने से नहीं रोकता, आगे बात आ रही है, अगली आयत में आएगी इंशाल्लाह। इस्लाम ये नहीं कहता फकीर बन के जियो और मरे हुए जियो, पर खाओ और खिलाओ। पिज्जा आया तुम भी खा रहे हो, एक पीस उसको दे, उसको किनारे दे दो। बच्चे के बचा हुआ बर्गर टूटा हुआ उनको, बच्चों को दे रहे हो, ये जुल्म है। वो इंसान है, हम जैसे हैं, दिल हमारा कैसा है, उनका दिल कैसा है। अब्दुल्ला बिन अमर ने अपने खजानची से पूछा, क्या गुलामों को खाना दे दिया, यानी जो टेक केयरर था उसको पूछा, उन्होंने कहा नहीं। फरमाया जाओ और इन्हें खाना दो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आदमी को इतना गुना काफी है कोई इन लोगों से अपने हाथ को रोके जिनकी मुआश का वो जिम्मेदार है। बाद लोग सारा घर खाना खा के चला गए, मेहमान चले गए, पता चला मासियों ने तो खाया ही नहीं, क्योंकि जी बेगम साहबा आई नहीं, उन्होंने अभी तक खाई नहीं, पतीली में से निकाल के, उनको इजाजत नहीं है खुद खाने की, तो वो चोरी खा लेंगी। आप जुल्म करेंगे, देखिएगा वो आपसे अच्छी खा लेंगी बोटी, पता है बाजी ने हड्डी वाली देनी है तो मैं सारे अपने से पहले पसंद की खा लेती हूँ। फिर वो करते हैं, हमने खुद उनको जालिम बनाया, जब उनको जो पता है कि बाजी ने बाद में अच्छा खाना ही देना है हमें, तो वो खाते हैं। वरना तो आज हाल ये हो गया है कि मासियाँ कहती हैं हमने नहीं खाना कल वाला, क्योंकि वो तो पकाते में खा चुकी हैं। फिर चोरियाँ होती हैं, फिर धोखे होते हैं। तो हमेशा सीधा सीधा रहेंगे तो इंशाल्लाह लोग भी सीधे होंगे। आपने फरमाया तुम में से किसी का खादिम खाना लाए तो उसको साथ बिठा कर खिलाओ, खाना कम हो तो सिर्फ दो लुक में उसको खिला दो, क्योंकि उसने पकाने की गर्मी और धुआं बर्दाश्त किया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो अल्लाह हमें इस खूबसूरत दीन की कदर करने वाला बनाए। नहीं मानेंगे तो एक जुमले में अल्लाह ने सारों को एक सदमे कर दिया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता किस चीज़ को, जो लोग शेखी खोरे और अकड़ने वाले हों। ये है दो लफ्ज़ जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, मुख्ताल और फखूर। मुख्ताल का लफ्ज़ ना खताल से, खा या लाम इसका रूट है। ख्याल कहते हैं घोड़े को, ख्याल लफ्ज़ भी इसी से है। अच्छा, घोड़े की चाल में ना एक रौनत होती है, चलता है तो ऐसे एक खूबसूरती के साथ चलता है। तो मुख्ताल कहते हैं तकब्बुर करने वाला, गरूर, अकड़ वाला। बुखारी की रिवायत है। ये वो लोग हैं जिनका फ़ख्र और तकब्बर इनको हकूक अदा करने में रुकावट बनता है। ये भी इसकी एक तफसीर है। मगरूर इंसान फ़ख्र की वजह से अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है, फिर अपनी कमाई को अपना ही हक समझता है। गरीब रिश्तेदारों, कमज़ोरों से ताल्लुक़ जोड़ना अपने दर्जे से नीचे की चीज़ समझता है, रियाकारी करता है। यहाँ मजम्मत की गई। और जो फ़खूर है ना, फ़ख्र से है। आपने उर्दू में भी लफ्ज़ सुना होगा फ़ख्र। फ़ख्र का लफ्ज़ी मानी होता है फटना, फट पड़ने वाले, थुड़ दिले लोग, जिसको आप कहना चाहिए लोग, कहले पर लोग, जिनके अंदर इतनी बर्दाश्त ही नहीं, उनके पास जरा अच्छा कपड़ा पहन लिए वो कहते हैं आज हम जैसा कोई हो तो सामने आए। भाई क्या कर लेगा आपके सामने आके? आप 30 मार खां बन जाएं, आप मिस वर्ल्ड भी बन जाएं, आप पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कपड़े पहनने वाली खातून भी बन जाएं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसे लोगों को जरूर ये नज़र में रखना चाहिए कि अगर हम अकड़ेंगे तो अल्लाह ताला की नज़र में अपने आप को छोटा करेंगे। आप इस पे अगर लेक्चर सुने ना, गरूर पे है, 2010 का जो दौरा कुरान था उसमें एक पूरा पारा जो था वो तकब्बुर पे था, कि मगरूर खुद को ऊंचे पहाड़ पे खड़े हुए शख्स की तरह सोचे। वो सोचते हैं मेरा कद लंबा हो गया, लेकिन दूसरों को साफ पता होता है ये पहाड़ के ऊपर खड़ा है, तो दूसरों को वो हकीर समझ रहा होता है, लेकिन असल में वो खुद छोटा बन जाता है। तो आप देखिए कि इंसानी ताल्लुकात की खूबसूरती इस एक आयत की रोशनी में हो जाए, अगर हमारे मुआशरे इस एक आयत पर अमल करने लग जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि कल क्या होगा, हमारा मुल्क कितना खूबसूरत हो जाएगा, हमारे मुल्क में इंसानी मामलात कितने हसीन तरीके से अंजाम देंगे। ये जो आज क्लासिफिकेशन हो गई और क्लासिफिकेशन हो गया ना, अब अगली आयतों में उनकी वजह समझ आ रही है। तकब्बुर और फख्र जिन बुराइयों को पैदा करता है और जो सोसाइटी पैदा होती है ना, उसके नतीजे में वही है। और याद रखिएगा, तकब्बुर वो बुराई है, एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर जन्नत में जाने से रोक लेगा। ये इब्ने मसूद की रिवायत है, सही मुस्लिम में। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, मेरा तो दिल करता है मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरा जूता अच्छा हो, क्या फिर ये तकब्बुर है? आपने फरमाया, नहीं, ये तकब्बुर नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। फिर तकब्बुर के बतर अल हक की व गिमतिन नास, इस पे अगर परख लें तो हमें समझ आ जाएगा मुतकब्बिर है कि नहीं। क्या? हक की तरफ से मुंह फेरना और दूसरों को कमतर जानना। हक सामने पेश किया कि ये दीन की बात है, उसको ना माना। दूसरों को कमतर जानना क्या है? कि मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं किसी से बात करूं, लो अब इतने अच्छे कपड़े पहन के नमाज पढ़ूं, मेरी तो ग्लासेस खराब हो जाएंगी अगर मैंने सजदा किया, ये तो कीमती बहुत सारे हैं, ऐसे है, ये वो है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, जो शख्स तकब्बुर करते हुए अपना कपड़ा घसीट कर चला, अल्लाह ताला इसकी तरफ नजरे रहमत से नहीं देखेगा। तो ये जो अच्छे कपड़े पहन के एक अजीब सी चाल आ जाती है ना बंदे की, ये भी तकब्बुर, इसको भी बचाएं। अच्छे कपड़े पहने, अल्लाह आपको नहीं रोकता, पर अदा ना दिखाएं, अकड़ ना हो, अपने आप को दूसरों से बड़ा ना समझें। क्योंकि माल की वजह से इंसान के अंदर ये रवैया आने लगता है कि वो कहता है कि ये मेरी चीज है, मेरे ऊपर है, किसी को देगा भी तो रोब जमाएगा कि जी मेरे अंदर है, फिर बुखल आने लगता है। और जब एक इंसान अल्लाह का बंदा खुद को समझे, वही वाह अब्दुल्ला से अब लिस्ट पूरी कर ले अपनी, जब दिल में अल्लाह की बंदगी होगी तो इंशाल्लाह बात नहीं बनेगी। अब ये था दी बेस्ट करेक्टर। पहले तो अपने लिए हम दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे।